नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। प्रोफेशनल लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की ओर से तैयार की गई एक सूची में देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज काम करने और करियर में प्रगति के लिहाज से सबसे अच्छी कंपनी मानी गई है। भारत में शीर्ष कंपनियों की 2023 की सूची में TCS पहले स्थान पर मौजूद है, जबकि Amazon दूसरे और मॉर्गन स्टेनले तीसरे स्थान पर है। इस सूची में पिछले साल प्रौद्योगिकी कंपनियों का दबदबा रहा था, लेकिन इस साल ये कम हुआ है। सूची में इस साल वित्तीय सेवा, तेल एवं गैस, पेशेवर सेवाएं, विनिर्माण और गेमिंग वाली कंपनियां भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार सूची में 25 में से 10 कंपनियां वित्तीय सेवा, बैंक, वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की हैं। इनमें मैक्वेरी ग्रुप 5वें स्थान पर, HDFC बैंक 11वें स्थान पर, मास्टर कार्ड 12वें और UB 14वें स्थान पर है। लिंक्डइन इंडिया के प्रबंध निदेशक निराजित बनर्जी ने कहा, अनिश्चितता के इस माहौल में पेशेवर काम करने के लिए ऐसी कंपनियों के बारे में मार्गदर्शन मांग रहे हैं जहां करियर का विकास हो और उन्हें दीर्घकालिक सफलता के लिए स्थापित होने में मदद मिले। दुनिया के प्रमुख उपभोक्ता प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल का देश की राजधानी दिल्ली में पहला स्टोर बृहस्पतिवार से खुल गया। इस मौके पर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO टिम कुक ने ग्राहकों का स्वागत किया। दिल्ली में एप्पल का स्टोर साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में खुला है। एप्पल साकेत नाम के इस स्टोर का डिजाइन दिल्ली के पुराने दरवाजों से प्रेरित है। हालांकि आकार में ये मुंबई के स्टोर से छोटा है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कारोबारी जिले के एक मॉल में एप्पल का स्टोर मंगलवार को खुला था। सूत्रों ने बताया कि एप्पल साकेत स्टोर आकार में मुंबई के स्टोर का आधा है। साकेत स्टोर में कंपनी की रिटेल टीम में 70 से अधिक सदस्य हैं जो देश के 18 राज्यों से हैं और अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं। कुक ने अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। आईफोन वेयर निर्माता कंपनी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में निवेश करने के इच्छुक हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से भी मुलाकात की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि कुक ने भारत में कलपुर्जे की आपूर्ति के लिए अपने आधार का विस्तार करने में सरकार से समर्थन देने का अनुरोध किया है। कच्चे तेल के दामों में नरमी के चलते रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में 9 पैसे चढ़कर 82.16 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि रुपये को घरेलू शेयर बाजार में तेजी का लाभ भी मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.21 पर खुला। इसके बाद 9 पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए ये 82.16 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 82.25 पर बंद हुआ था। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 1% की गिरावट के साथ $82.29 प्रति बैरल पर था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.03% की गिरावट के साथ 101.93 पर आ गया। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और बैंकिंग शेयरों में लिवाली के चलते बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी बढ़त के साथ खुले। इसके साथ ही शेयर बाजारों में बीते 3 दिन से जारी गिरावट थम गई। इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 210.49 अंक बढ़कर 59,768.29 अंक पर पहुंच गया। वहीं NSE निफ्टी 56.35 अंक चढ़कर 17,675.80 अंक पर था। सेंसेक्स में टाइटन, लार्सन एंड टुब्रो, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, ITC, इंडसइंड बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ICICI बैंक, विप्रो और NTPC के शेयर लाभ में कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर नेस्ले और रिलायंस इंडस्ट्रीज नुकसान में थे। एशियाई बाजारों में जापान और हांगकांग के बाजार लाभ में कारोबार कर रहे थे, जबकि सियोल, शंघाई के बाजार नुकसान में थे। अमेरिकी बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। पिछले कारोबारी सत्र में बुधवार को 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 159.21 अंक यानी 0.27% की गिरावट के साथ 59,567.80 अंक पर बंद हुआ था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 41.40 अंक यानी 0.23% की गिरावट के साथ 17,618.75 अंक पर बंद हुआ था। इस बीच वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1% की गिरावट के साथ $82.29 प्रति बैरल पर था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 13.17 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विदेशी अंशदान अधिनियम में कथित तौर पर अनियमितता को लेकर ऑक्सफैम इंडिया और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले की शिकायत केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से की गई थी। सीबीआई अफसरों ने बुधवार को बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, इसके बावजूद उसने दूसरे माध्यमों से धन के लेन देन के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाए। एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने विदेशी अंशदान अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर दिल्ली में ऑक्सफैम इंडिया के कार्यालय में तलाशी ली। शिकायत में कहा गया है कि संगठन ने सामाजिक गतिविधियों को करने के लिए एफसीआरए पंजीकरण प्राप्त किया था, लेकिन कमीशन के रूप में अपने सहयोगियों या कर्मचारियों के माध्यम से सीपीआर को किया गया भुगतान पेशेवर या तकनीकी सेवाएं इसके घोषित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। इसमें आरोप लगाया गया ये एफसीआरए 2010 की धारा 8 और 12 4 का उल्लंघन है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।